Shri Chaitanya Mahavishnam Sthapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastade Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sute Devi Paramami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sanyavadi Paschakta Desatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravakta Vrunda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare
हरि नाम दीक्षा के बारे में हमें शास्त्र के आज्ञा के अनुसार दस अपराधों से आपको परिचित करना होता है जिसमें भगवान के नाम लेते लेते भी हमें बहुत सारी परेशानी आती है जो अज्ञान द्वारा आती है यानी कि भगवान के नाम की महत्ता न जाने जो अज्ञान पड़ता है तो वो अज्ञान द्वारा हमें परेशानी आती है दूसरा है हमारे अनर्थों से भी परेशानी आती है और तीसरा है हम वैष्णव शिष्टाचार हैं जो आवश्यक शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो जो हमें लाल बत्ती बताने वाले जो अपराध हैं इनसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है इन तीन चीज अज्ञानता भी दूर हो जाए अनर्थ भी दूर हो जाए और अपराध है नहीं तो अज्ञान ही अनर्थ आगे बढ़ाता है और अनर्थ अपराध में पलटता है ये सामान्य कर्मी लोगों के लिए जो कर्मबद्ध हैं उनके लिए ये नरक गामी मार में ये उद्दीपन देते हैं वो उनको आगे पुश करते हैं ये तीन चीजें ऐसी हैं अज्ञानता अनर्थ और अपराध जब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ये सारी तीन चीज निकाल देंगे फिर भी हम जानबूझकर ना समझ रहे कर इन चीजों पर हम अपनी असावधानी बताते हैं तो अवश्य दुर्घटना हो सकती है तो इसलिए ये हरिनाम दीक्षा में हमें कम से कम 10 अपराधों से प्रति सबको काफी अवगत कराना होता है तो सर्वप्रथम अपराध बताया है कि भगवान का नाम का प्रचार करने वाले हैं वाम भक्तों का कोई आलोचना करना या उसके प्रति अनादर बताना किसकी अवगणना करना तो ये अपराध भगवान के नाम पर चढ़ता है क्योंकि नाम की शक्ति जिसमें प्रवेश कर चुकी है और जो शक्ति के आधार पर भगवान का नाम का प्रवर्तन कर रहा है, तो नाम वो प्रवर्तक की रक्षा करता है। तो जब ये प्रवर्तक प्रचार करने वाले का ही हम यदि कोई आलोचना करें या सामान्य व्यक्ति के रूप में उसको समझें और ये तो मेरा मित्र है इसलिए नहीं, अनादर जब होता है तो भगवान का नाम वहां रुक जाता है, ये अपराध तो मेरे सर पर लगा। यानी कि भगवान के नाम की जो हमें वास्तविक प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होती। भगवान का नाम एक बार भी लेता है, इनका भी अपराध नहीं करने को हरिदास ठाकुर कहते हैं। यानी कि भगवान का नाम प्रचार करने वाले महान भक्तों की निंदा करना, आलोचना करना या परेशानी खड़ी करना इनको के लिए, ये तो ये भक्ति का जो सारा मार्ग है इसमें हमारी सर्वप्रथम न जानकारी जब होती है तब ना समझ में हम काफी कुछ कर लेते हैं। जबकि भगवान का नाम तो हर एक को पवित्र करने वाला है, और क्यों हमें नहीं पवित्र करता, हम ये समझेंगे। तब तो देखो यदि अपराध जाने अनजाने में यदि हुआ हो तो भगवान का नाम अपने मत्थे पर वो अपराध चढ़ाता है, इसलिए हमारी प्रगति नहीं है। तो ये सर्वप्रथम नाम अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि नाम और भगवान स्वयं दोनों में अंतर नहीं होता है। वो भगवान का नाम चिंतामणि जैसा बताया है, चिंता यानी सोचना, मणि यानी सोच के ही जो हमें उसका फल तुरंत दे देता है, ऐसा नाम है। नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भगवान का नाम और वो भी चेतना वाला, और सिर्फ चेतना ही नहीं उसमें सारे प्रकार के रस हैं जो जिसका आस्वाद लेकर हम प्रसन्न होते हैं। यानी कि ये तो प्रेम देने वाला है, हमारी प्रसन्नता प्रेम पर आधार है। जो प्रेम जिसके पास नहीं हो प्रसन्न भी नहीं रहेगा। तो यानी कि हमारी प्रसन्नता का आधार भगवान का प्रेम है। तो सात्विक भाव से हम जो रहते तो अवश्य प्रसन्नता आएगी ही आएगी, क्योंकि ये प्रगति का मार्ग है। तो सर्वप्रथम नाम अपराध भगवान और भगवान के नाम की जो इस तादात्म्यता है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का नाम सिर्फ वाइब्रेशन नहीं है, तरंगे नहीं है हवा की। लेते हैं तो तरंग भी निकलेगी, लेकिन ये सिर्फ तरंग नहीं, जैसे कि हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो वेव्स भी जो तरंग होती हैं, पर रेडियो वेव से हमें कोई अध्यात्म नहीं होती। भगवान का नाम यदि रेडियो में आता है तो अवश्य वो नाम की प्रतीति, नाम की ध्वनि की जो तरंग है उसकी प्रतीति हो सकती है। इसलिए तो बहुत सारे साधन में भगवान का नाम प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र जाने वो मिलता रहता है। तो ये तरंगे और भौतिक आवाज जो होती है दोनों की तरंग में बहुत आसमान जमीन का अंतर होता है। ये तरंगे इतनी सूक्ष्म होती हैं जो रेडियो वेव्स या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी ज्यादा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। भौतिक का भी स्थूलता, स्थूल हो तो द्रवित, द्रव हो तो गैस स्टेट में होती है, उसका वायु की स्थित आती है, वायु के बाद बहुत सूक्ष्म अवस्था आती है। लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था भगवान के नाम की तरंग जो आध्यात्मिक स्तर पे होती है। इसका मतलब यह है कि कई भौतिक तीनों गुणों की असर भी नहीं होगी, भौतिक सत्व रज और तमोगुण की असर भी भगवान के नाम पर नहीं होगी। तभी तो उसको उसके पास हमें पवित्र कराने की शक्ति है। हमें पवित्र कराने की शक्ति भगवान के नाम में क्यों है? क्यों उसकी तरंग आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। तो जो जो भगवान का कोई नाम लेता है तो कुंती देवी की प्रार्थना सुनो, क्योंकि चांडाल भी यदि लेता है तो ये तो सारे तपों का फल उसे प्राप्त हो ही चुका है, सारे यज्ञों का तप और दानों का भी फल प्राप्त हो चुका है, तभी तो भगवान का नाम ले सकता है। पहले है जमाने में यानी कि सत्ययुग में भगवान का नाम पाने के लिए पहले तप करना पड़ता है, त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता है भगवान का नाम पाने के लिए, और द्वापर में दान धर्म। अब कलयुग तो वैसे ही बेकार है, तो भगवान का नाम ही सीधा मिल रहा है तो उसकी अवगणना करने वाले कितने मूर्ख लोग होंगे। तो जो हम भगवान के नाम की महत्ता नहीं जानते यानी कि कीमत नहीं जानते तो हम ना समझ में बहुत सारे अपराध कर लेते हैं। जैसे कि जब तक भगवान का नाम का प्रचार नहीं होता तब तक कोई अपनाता भी नहीं, इसलिए भक्तों के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है कि नाम की महिमा। तो चिंतामणि जो सिर्फ सोचते ही भगवत प्राप्ति करा लो, जो जो बोलते ही अपना स्वरूप बताता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है भगवान कृष्ण उसकी जीवा पर नाचते हैं। तो वो जो अनुभूति है सामान्य आदमी को तो थोड़ी हो सकती है लेकिन भगवान के नाम की पवित्रता जिसमें आ गई हो तो सब कुछ अनुभव कर सकता है। पहले पवित्र होने की आवश्यकता है। तो भगवान के नाम की जो शक्ति है तो पूर्ण शुद्ध अपने आप में तो पवित्र है, पूर्ण शुद्ध है और नित्य मुक्त है, वो स्वतंत्र है भगवान। और जब भगवान स्वतंत्र होते हैं देवताएं स्वतंत्र नहीं होते, देवियां स्वतंत्र नहीं होती, भगवान अकेले ही एक स्वतंत्र हो सकते हैं। तो भगवान का नाम भी स्वतंत्र है क्योंकि दोनों में अंतर अभिन्नत्वाम नाम नाम अभिन्नता है। कोई भी आध्यात्मिक चीज में आध्यात्मिक वस्तु और विषय में भेद नहीं है, भौतिक चीज में भौतिक वस्तु और विषय में भेद। आप कोको कोला चांट करा करो क्या होगा, कोको कोला थोड़ी मुंह में आ जाएगी, रस का स्वाद मिलेगा क्या? कुछ नहीं। बल्कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो तो रसानुभूति पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हो। तो रसमूर्ति जो है भगवान का नाम रसमूर्ति, वो लेते कब हम उठते हैं, नाम से नाम ही बढ़ते जाता है। कोई दो माला कर रहा है तो चार करेगा, चार कर रहा है तो आठ करेगा, आठ करेगा तो सोलह भी करेगा, है ना? ऐसे ये विकास का क्रम है। जो ना समझ है अपने आप में यदि पकड़ रखते नहीं मुझे तो इतना काफी है तो, लेकिन उसका विकास नहीं होगा। नाम का नाम नाम की शक्ति में जो मोमेंटम है, जो आध्यात्मिक ताकत है, वो आपको अंतस्पूर्णा से बढ़ाएगी। इनको हम रोक नहीं सकते, भक्ति को रोक नहीं सकते, तो भगवान का नाम को भी हम रोक नहीं सकते। और शास्त्र में तो कहा कि जो रोके तो उसका त्याग करो। कभी कभी माँ बाप भी नाम ना समझ में बच्चों को अरे क्या नहीं कर बैठा है, पढ़ने की बात नहीं तो कितनी माला कर बैठा। हाँ माँ बाप रोकते हैं देखना देखो, सर्वप्रथम पिता का त्याग करने वाला प्रहलाद था, राइट। माता का त्याग करने वाला भरत और शत्रुघ्न थे, कैकेयी का त्याग किया था। और पति का त्याग किसने किया? पति का त्याग किसने किया? जब ब्राह्मण लोग करते थे यज्ञ और कृष्ण भगवान
मांगने गए थे,
मांगने गए थे,
लेकिन मां दिया नहीं था,
तो ये ब्राह्मण
पत्नी ने त्याग किया था।
और सर्वस्व त्याग किसने किया था? गोपियों ने। तो ये भगवान के नाम के पीछे है। भगवान के नाम या नाम निकालने वाली कोई भी माध्यम हो, बांसुरी हो या कुछ भी हो, गोपियां तो पागल हो जाती थी। क्योंकि ये जो ध्वनि है वो आध्यात्मिक ध्वनि है। गोलोकेर प्रेम धाम हरि नाम संकीर्तन, वो आध्यात्मिक ध्वनि है। तो आध्यात्मिक ध्वनि की महत्ता हमें समझनी चाहिए कि ये सामान्य मामूली नाम नहीं। और कलयुग में जब कल संतरणीय उपनिषद और जो यजुर्वेद का भाग है तो उसमें ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। वैसे हर एक कलयुग में हरे राम से मंत्र चालू होता है, कर सकते हो। लेकिन यहां तो चैतन्य महाप्रभु जो जैसे कृष्ण भगवान अपने ये वृंदावन लीला के लिए ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक कल्प में एक बार ही आते, जिसमें 1000 बार द्वापर युग आ जाएंगे, पर एक ही द्वापर युग द्वापर अंते जब प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी स्पेशल कहलाते हैं कि जो राधा कृष्ण नाही अन्य। रिपीट करने आए हैं कि कलयुग में कोई साधन नहीं, तो उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो हरे राम से नहीं चालू करते, वो हरे कृष्ण से चालू करते हैं। इनके पीछे भी बहुत कारण समझने की आवश्यकता है कि लोग राम और कृष्ण में अंतर करते हैं, वो भी उन्होंने निकाल दिया। राम शब्द का अर्थ शास्त्र में बताए अनुसार भगवान का आनंददायक वाचक नाम को राम कहते हैं। रामचंद्र में आनंददायक बातें कितनी, सबको रुला के गए थे, 14-14 साल तक रुला है। और सीता के आनंद को भी कैसे इन्होंने, जो हम सिर्फ अपने आनंद के लिए, अरे हम हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत मजा आती है, तो ऐसा नहीं सुनना, ऐसा बोलना ना समझ। लोग कह देते हैं कि हमें तो बहुत मजा आती है हरे कृष्ण महामंत्र, अरे मजा के लिए नहीं है, भगवान के आनंद के लिए हमें नाम लेना होता है। उल्टा क्यों, जब भगवान को आनंद होगा तो इनके अंशों को भी आनंद होगा, सही ना। तो भक्ति में तो हमें ये देखना है कि ये शब्द राम शब्द राधा रानी को लागू, क्योंकि वो भगवान के आनंद की शक्ति लादिनी शक्ति है। लादिनी शक्ति है। तो जब हम सीखते हैं यहां तो राधा रानी की भी सेवा होती है, तो राधा रानी की सेवा के लिए इनमें मंत्र बोले जाते हैं, श्रीम राम राधिकाय उनको अर्पण कर रहे हैं, कृष्णाय नमः, प्रेम कृष्णाय नमः, श्रीम राम राधिकाय। तो राम शब्द राधा रानी को लागू होता है। तो आप तो देखो कि हरे शब्द भी लागू होता है हरे कृष्ण महामंत्र में, तो वो अंतरंग शक्ति हरा के रूप में उसको संबोधन करने के लिए हरे कृष्ण हे राधे, हरा राधा रानी को संबोधित करते हैं। राधा रानी को संबोधित करते हैं। और क्यों हम राधा रानी जैसी सेवा करती हैं वैसी सेवा करने की याचना करते हैं उसे, हरे कृष्ण हे राधे, तो कृष्ण भगवान की जैसी सेवा हमें सिखा, लेकिन क्यों? हरे राम भगवान के आनंद के, हमें इनकी सेवा कर हमारे आनंद के लिए है। तो शुद्ध भक्ति में भगवान का आनंद, यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारी दुनिया, तो इनको तुष्टि देनी है, भगवान का तोषण करना, संसिद्धि हरि तोषण। अतः कुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुतिष्ठ से धर्म से संसिद्धि हरि तोषण। अपने अपने वर्ण आश्रम में आप वानप्रस्थ हैं, अपने आश्रम में स्थिर रहकर भगवान के संतोष के लिए अभी जियो, अपने नियुक्त कर्म बताए गए हैं कि हमें वानप्रस्थ अवस्था में क्या करना है, सही? तो गृहस्थों के लिए इनको क्या करना है, सब सुचित कर्म करते ही भगवान के संतोष के लिए यदि करते हैं तो संसिद्धि पूर्ण तक प्राप्त होती, अन्यथा नहीं होती। तो वेद में कहा कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, एक ही व्यक्ति को हम यदि संतोष देते हैं जिससे सारा जगत तुष्ट हो जाता है, वो भगवान कृष्ण। इनका नाम जब लें तो राधा रानी भगवान को जितना तुष्ट कर सकती है उतना कोई और नहीं कर सकता, इसलिए वो सेवा कैसे करना वो जानती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का ये अर्थ बताया है, हे राधा रानी आप हमें कृष्ण भगवान की सेवा सिखाइए, हे कृष्ण आप हमारी सेवा स्वीकारो, हरे कृष्ण भगवान को आनंद होगा। जब भगवान को आनंद प्राप्त होता है उसका रिफ्लेक्शन हम पर पड़ता है, सही? भगवान को देखना इनको समझना बाद में, ये भगवान के नाम की पवित्रता द्वारा इनके बारे में समझ भी आती है। तो इसीलिए वेद ने ये भी कहा है कि कस्मिन भगवो यस्यम विज्ञातम सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, एक ही व्यक्ति ऐसी है जिनको जानकर सब कुछ जाना जाता है, वो कृष्ण भगवान। इनकी सारी आध्यात्मिक स्थिति शिव जी बताते हैं पार्वती को, या भी राधा कटाक्ष जो पड़ा शिव जी की प्रतीति है, इसमें उनका अनुभव है, भगवान की स्थिति सर्वोच्च स्थिति बताते हैं, सर्वोच्च देवताओं और विष्णु की स्थिति सर्वोच्च नहीं है, ये वैष्णव तंत्र में है। पर फिर भी रामानुजाचार्य ने जो वैष्णविज्म में जो स्थापित किया है कि लक्ष्मी नारायण की सेवा और विष्णु सर्वोत्तम है, तो वो तो भौतिक सृष्टि की पैदाश में विष्णु नाम आता है, अध्यात्म की सृष्टि में तो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। नारायण शब्द विष्णु को लागू हो सकता है, पर लेकिन तत्व की दृष्टि से देखें तो तीनों गुणों से परे विष्णु तत्व होता है। जीव तत्व भगवान विष्णु का ही अंश या कृष्ण का अंश कहते हैं, तो वो भी विशुद्ध अवस्था में तो भगवान की सेवा में तो तादात्म्यता पाता है, भगवान की नजदीकता भी पाता है। जब हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि वैकुंठ लोक में रहने वाले चतुर्भुज होते हैं और इतने श्रृंगार भगवान जैसे ही रूप लेकर खड़े हैं, लेकिन सभी सेवक हैं, हमें तो पता भी नहीं चला कि कौन भगवान है। इसीलिए ये तत्व की जानकारी विष्णु तत्व के नाम से बताते हैं, जो तीनों गुणों से परे, यानी कि तीनों गुणों की असर जिस पर नहीं होती है वो विष्णु तत्व है। जीव को अपने स्वाभाविक अवस्था जो भगवान का अंश है तो भगवान का ही चरित्र वाला होना चाहिए, वो भी भगवान का तत्व वाला होना चाहिए, नहीं तो भगवान और हमारे में गुणात्मक एकता कैसे आएगी। गुणात्मक एकता है हमारे गुण, यानी कि जो आध्यात्मिक गुण है सत चित आनंद, तीन आध्यात्मिक गुण है। जो ये अपने भौतिक गुण हट जाते हैं सत्व रजोतम, तो ये आध्यात्मिक गुण हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जब तक ये देह के साथ आत्मा जुड़ा है तब तक ये कम से कम हमें सात्विक भाव में तो रहना ही चाहिए कि सात्विक अवस्था हमें आध्यात्मिक अवस्था सच्चिदानंद की अवस्था में आगे ले जाए, तभी तो हम अनुभूति कर सकते हैं। तो ये अवस्था को मुक्ति कहते हैं, जो तीन गुणों से छुटा है वो मुक्त होता है। तो लेकिन ये भगवान के नाम की शक्ति के परिचय द्वारा ये सारी शुद्धता होते होते हैं हमें शास्त्र जो कहता है उसकी समझ आती है कि हम तीनों गुणों से छुटे, उसे मुक्ति कहते हैं। और भक्ति करने वाले, भगवान के निदान करने वाले को अलग ढंग से छूटने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के विशुद्ध भक्ति तो मुक्ति के बाद शुरू होती है, वैसे कृष्ण भगवान कहते हैं, जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समत् सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परा, मेरी परा भक्ति श्रेष्ठ भक्ति शुद्ध भक्ति। हम तो अभी देहात्म भान से जो भक्ति करते हैं तो बहुत सारी इधर उधर होती है, अपराध होते रहते हैं। तो ये सर्वप्रथम अपराध इसलिए इतना गंभीर माना जाता है कि आप जितने लाखों नाम जपते रहो फिर भी आपको कोई सफलता नहीं मिलती, तो समझना कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध हुआ है, किसी भक्त का अपराध हुआ है। भगवान से प्रार्थना करना कौन सा कब अपराध आप हमारे ख्याल में नहीं है, क्योंकि भूलने की आदत होती है, लेकिन भगवान से तो प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने में तो नहीं करना चाहिए। कब तक अनजान बने रहोगे, सिखाया जाता है, तो अनजानेपन से हमें अपराध नहीं करना है। पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करके तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये खतरनाक अपराध है जो अपनी भक्ति को रोक देता है। तब ये दुर्वासा मुनि को पता चला, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का परीक्षा करने आए कि ये कितने शुद्ध भक्त हैं, कि ढोंगी हैं क्या है। तो एकादशी के दूसरे दिन पहुंच गए, जब पारणा का समय होता है ना, उसे पहले पहुंच गए कि मैं आ रहा हूं, हजार शिष्य हैं, हम स्नान करके आते हैं, बाद में ये करेंगे पारणा करेंगे। तो अम्बरीश महाराज ने कहा, लेकिन वो लोग जानबूझकर आए ही नहीं और यहां पारणा का समय जा रहा है, तो परीक्षा थी। तो अम्बरीश महाराज ने अपने मंत्रियों से पूछा कि कोई उपाय है, कि हाँ है, आप भगवान के चरणामृत ले सकते हो जिससे कोई अपराध नहीं चढ़ता। पानी है पर पानी पीने से पानी कोई खुराक नहीं, पानी कोई खुराक नहीं, खुराक खाने से पारणा टूटता है और उसमें भी खास करके अन्न, तो ये तो टूटेगा भी और नहीं भी टूटेगा, ऐसी परिस्थिति है तो आपको पालन करने की आवश्यकता है, फिर भी उसके कोई अपराध नहीं है, इसलिए भगवान की सुरक्षा आपको मिल जाएगी। ठीक, तो उन्होंने चरणामृत थोड़ा पी लिया। तो दुर्वासा मुनि काफी वो कर्मकांडी होने की वजह से वो भक्ति का भाव नहीं जानते, वो आकर डांटने लगे उसको, तूने घोर अपराध किया है, तू पाखंडी है, तू ये है वो है करके गाली बकने लगे और गुस्से में आकर अपने बाल तोड़े और पट के मंत्र बोल के और एक राक्षस को पैदा किए, ये पाखंडी दिखा देते। जैसा राक्षस मारने जाता है तो पीछे से भगवान का सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिक आ गया और राक्षस को मार दिया और दुर्वासा के पीछे दौड़ा। दुर्वासा अपनी सारी ताकत अजमाकर अपने पिता के पास जाते हैं, ओ पिताजी पिताजी हमारी रक्षा करो। तो शिव जी तो जानते हैं तो बेवकूफ है, तू तो बेवकूफ है, कह दे दिया ऐसा गंभीर अपराध करता है, कोई माफ नहीं करेगा, निकल गया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के ये तो मेरा डिपार्टमेंट है ही नहीं, जब सुदर्शन छूटा है तो नारायण के पास जाओ। वो नारायण के पास गए और नारायण कह के हो मेरी आंखें से छूट गए, हम मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों दरवाजा कह रहे भगवान बचाओ, आपका सुदर्शन चक्र है, दूसरों का तो होता ही नहीं। भगवान के दिल भाई एक बार पिता तो काम करके ही लौटेगा, समय आएगा वो मेरा भी नहीं कहना मानता, वो ऑटोमेटिक है। भगवान ने कहा वो ऑटोमेटिक है ना वैसे भी पराश शक्तिर विविधीय सूर्यते स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया है, भगवान के स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। तो भगवान को कोई ऑर्डर दो ना, जा तो सुदर्शन चक्र देख दुर्वासा ने अपराध किया है, तुम मारो उसको, ऐसे नहीं गया, उसको भगवान को ऑर्डर छोड़ा नहीं पड़ता है। ये तो शक्ति है, तो शक्ति शक्तिमान के स्वभाव को जानकर ऑटोमेटिक काम करती है। तो जब ये भगवान के पास पहुंचा तो अरे भगवान के पास जो पहुंचता है इतनी सारी ताकत है फिर भी अपराध कर जाएगा काम, जब भगवान ने मना कर दिया तो गया काम से। तब याद आया कि एक अम्बरीश ही बचा सकता है, तब वो वापस आकर अम्बरीश को प्रार्थना करते हैं कि भैया तो सुदर्शन से प्रार्थना कर, मैं तेरी माफी मांगता हूं, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो भक्त लोग दयालु होते हैं, अम्बरीश महाराज ने बहुत बढ़िया प्रार्थना की और रक्षा की। तो ये है जो भगवान के शुद्ध भक्तों और जो भगवान के नाम के प्रचार में जुटे हैं इनकी कभी आलोचना नहीं करना। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मादि नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर समझना या स्वतंत्र समझना। भगवान ही स्वतंत्र होते हैं, अन्य भगवान के दास होते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं कहलाते। सभी एकले ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य जहारा इच्छा हवे तारे नचावे नृत्य, ही मेक्स एवरीबडी डांस, सबको नचाता है। गोपियां नचाती थी वो तो प्रेम के वश नाचता था, अन्यथा नहीं कोई नाच, वो भी उसकी स्वतंत्रता पर। वो इतना स्वतंत्र है कि घर में मक्खन खाने के लिए बहुत पड़ा है फिर भी चोरी करके खाता, ऐसी स्वतंत्रता। वो कह रहे मेरे घर का मक्खन ही क्यों मेरा है, सारे जगत का मक्खन मेरा है, कि मैं मालिक हूं, मैं क्यों ना खाऊं, ना दे तो चोरी करूंगा। जो भी नहीं देना चाहता है तो उठा के ले लेते हैं, हरी है ना तो हर लेता है। इसलिए हरि के भगत कम होते हैं। लोग मूर्ख बनकर शिव जी के पास जाते हैं कि क्या आशुतोष है ना, जल्दी से दे देंगे, पर दे देंगे तो माया को कहें कि अभी उसको जरा पाठ पड़ा, क्योंकि ये तो तेरी संपत्ति है। तो शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान के नाम के तुल्य समझना या स्वतंत्र समझना यह अपराध है। तीसरा अपराध गुरु की अवज्ञा करना। इसका मतलब यह है कि गुरु आध्यात्मिक शिक्षा के लिए होते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। अपना उत्तम आध्यात्मिक श्रेय क्या है? शास्त्रे परेच निष्णातम ब्रह्मणि समुपासित। परे शास्त्र यानी कि ये आध्यात्मिक शास्त्र है, जो अध्यात्म में आपको सारे जीवन का संकलन क्या है, क्या निचोड़ है, वो सब अध्यात्म में आता है। वेद अध्यात्म की ओर ले जाता है, नहीं तो उसमें ये कर्मकांडीय विषय ज्यादा है, त्रिगुणात्मक है। जब तक त्रिगुणात्मक है तो अध्यात्म तत्व निकालना मुश्किल हो जाता है। वेद खिचड़ी जैसा है और अध्यात्म उसमें पड़ा हुआ घी जैसा है। निकालो घी, खिचड़ी में पड़ा हुआ घी कभी कोई निकाल सकता है? नहीं निकलता। तो वेदों में कठिनाई होती है, इसलिए वेद व्यास ने एक वेद के चार वेद बनाए, चार वेद के बाद 108 संहिता बनाए जो उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद में धीरे धीरे आध्यात्मिकता बाहर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उपनिषद में कर्मकांड विषय नहीं चलते, इसलिए गुरु के नजदीक बैठकर उपनिषद उप यानी नजदीक बैठकर जो ग्रहण करना होता है तो वो उपनिषद कहलाता है। अर्जुन ने भी भगवद गीता भगवान के नजदीक बैठकर ही तो सुनी है। तो ये उपनिषद है, गीतोपनिषद। तो उपनिषद में अध्यात्म की चर्चा आती है और जीव को त्रिगुण भाव से छूटने का निर्देश करती है, यानी कि मुक्ति पथ देती है। ज्ञान द्वारा, कर्म योग द्वारा, तो ये सारी पद्धतियां वहां से प्रकट होती हैं। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन। चौथा, पांचवा भी साथ में ले लो तो हरे कृष्णा महामंत्र के जप को काल्पनिक समझना। और छठा अपराध है हरे कृष्णा महामंत्र वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। ये चार पांच और छठा जो अपराध है तो बड़े कोई बाहर पढ़े लिखे हुए काफी घमंडी बन जाते हैं, इन लोगों के लिए आसानी से वो अपराध करते हैं। क्यों? क्यों वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन वो अपने मनगढ़ंत विचारों से, अथवा यूं कह देगा कि अरे आदमी ने ही तो लिखा होगा, ये प्रमाण कहां से कहलाता है, चैलेंज देगा। ये ना समझ ऐसी बातें आती है तो कहेगा कि ओ ये तो कल्पना का विषय है, द फेरी टेल्स हैं, परिकथाएं हैं, ऐसी बातें। तो ये सब वेदों के जो कंक्लूजन है वो वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण मुझे दिया गया है कि भगवत प्राप्ति का विषय के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। बीच में आता है कि अपनी अपनी इच्छाओं पूर्ण करने के बाद हम कुछ आगे प्रगति कर सके तो वो भी आता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही बताई गई। तो ये प्रमाणों का खंडन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये प्रमाणों का सदुपयोग करके अपनी अध्यात्म की ओर प्रगति के लिए लिए गए। ऐसा नहीं कि जड़ता से ही हम उपयोग करते रहें और प्रगति ना करें, जैसे कि आर्य समाज। हाँ, वह आर्य समाज जी ऐसे ग्रंथी वाले हैं कि तोड़ना मुश्किल है। वेद को ही सत्य माना, तो सत्य है, लेकिन कर्मकांडीय क्यों? उपनिषद इत्यादि ना चार वेद ही हमारे लिए मुख्य है। ये न उपनिषद, न इतिहास, न पुराण, इन लोगों के लिए कोई प्रमाण देता है, ऐसे जड़। इसलिए जो चौथा अपराध में वैदिक शास्त्रों अथवा उसके अनुसार आनुषंगिक शास्त्र लिखे गए हैं, जिसमें वही प्रमाण यदि हम देखते हैं तो ये प्रमाणों का खंडन करने वाला तो अपराधी है। तो हम ये भगवान का नाम को कल्पना मानना भी अपराध चढ़ जाता है, और अर्थ घटन करना वैदिक शास्त्रों में अर्थ घटन का अपवाद, ये करना भी अपराध बन जाता है। तो चार पांच छह ये जिन लोगों में पढ़े लिखे का ज्यादा अभिमान है वो लोग करते हैं, ना समझ होकर जो जानकर और फिर भी अपना मत बता देते हैं उल्टा। एक तो है कोई जानकारी नहीं, दूसरे लोग ने अपनी वहां यहां हम वेदों में मानते ही नहीं, मानते नहीं है तो आपका क्या सरोकार है, न मानते हैं तो दूर रहो, यहां आने की आवश्यकता, अपराध करने की आवश्यकता क्या? सो भगवान का नाम इन लोगों से कुंठित हो जाता है, क्योंकि ये अपराध चढ़ता है, नाम पर ही चढ़ता है। ये सारे अपराध वैसे नामा पर रहते हैं, मानते हैं, चाहे हम नाम लेने वाले व्यक्ति का भी अपराध करें या नाम के साथ जो जो जुड़े हैं, जो जो महत्ता दे रहे हैं, जो शास्त्र प्रमाण द्वारा हमें सिर्फ भगवान पर एकमात्र श्रद्धा टिकाने वाली जो बात कहीं गए, हम देखते कि हरे कृष्ण महामंत्र वाले सब अपने देवता देवियों को भी साथ में लेकर चलते हैं, अरे नाम चलते उसको बुरा लग जाएगा तो हमारा बिगड़े, यानी कि उसको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। तो जब कमजोर विश्वास होता है तो नाम पर अपराध कर लेता है। नाम से वास्तविकता प्रकट होती है जब हमारे दिल में ये प्रतीति कराती है कि हम किसी का अपराध नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों को भगवान के साथ समांतर भाव से नहीं देख सकते। भगवान एक होते हैं, अनेक नहीं होते हैं। और एक की स्पष्टता जब हमें शास्त्र द्वारा मिलती है तब स्वीकारने के लिए क्या हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे? क्या हमारे मन में जो है उसी ढंग से जीते हैं? मन तो बेवकूफ बनाता है सारी जिंदगी, किसी ने अपना मन जीता है को सारी जिंदगी जो तर जाता है। भगवान का नाम ही धारण कर रहा है ना, वही मन को कंट्रोल में रख सकता है। हाँ, सातवां अपराध है कि नाम के बल पर पाप कर्म करते रहे। हाँ, ये जब शुद्ध होते हैं तो शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, अशुद्धि या जो मलिनता में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पाप कर्म हमें फिर से एक तो अज्ञानता के मोड़ में डाल देता है, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति से चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो वो भी पवित्र हो सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन अपि चेदसि पापेभ्य सर्व पापेभ्य कृत्तम सर्व ज्ञान प्लवैनम च वृजिनम संतरिष्यति। तू अपने आप को सारे पापियों का भी सबसे बड़ा पापी समझता होगा क्योंकि ये तुम सबको मारने का जिम्मेदार बनेगा यानी तो कितना पाप करेगा तू ये समझ रहा है नहीं अपि चेदसि पापेभ्य सर्व पापेभ्य कृत्तम सारे पापियों से भी उत्तम पापी अपने आप को समझता है लेकिन सर्व ज्ञान प्लवेन मुंच ज्ञान प्लव यानी कि ज्ञान की नाव उसमें बैठकर ज्ञान की नाव भगवान के नाम की महत्ता का जो ज्ञान है उस नाव में हमें बैठना है। तप के बल हमारे पास नहीं है न यज्ञ के बल हमारे पास है न दान धर्म का बल हमारे पास है लेकिन ये भक्ति का बल भगवान के नाम द्वारा जो मिल रहा है वो तो हमारे पास है। तो सर्व ज्ञान प्लवैनम च वृजिनम संतरिष्य ये सारा भव संसार तर सके ऐसी सक्षम नाव भगवान के नाम के भगवान का नाम नाव चलाने के लिए फेवरेबल विंड का है पवन भी तो चाहिए तो पवन बहता रहे यानी कि हमारा हरे कृष्ण महामंत्र बहता रहे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ये सततम कीर्तयंतो माम भगवान कहते हैं सततम कीर्तयंतो क्योंकि ये फेवरेबल विंड है। मनुष्य शरीर उत्तम नौका बताई है प्राणियों का शरीर उत्तम नौका नहीं है वो तो जन्म मरण के चक्कर में इनके चालू है लेकिन ये नौका से तरने का संभव है ना। तो मनुष्य का शरीर जो है उत्तम नौका है और ये जो विंड है जो नौका को आगे ले जाए तो वो हरिनाम है नाविक कुशल होना चाहिए जो हमारे भक्ति में आगे प्रगति करा बहु संसार पार कराने के लिए पहले आगे बढ़ाए बहु संसार पार करना क्योंकि रिपीटेड बर्थ एंड डेथ में अभी घुसे थे पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु इत्यादि तो बारंबार ये बारंबार भी अभी ये लास्ट समझो भगवान के नाम की पवित्रता का पूर्ण उपयोग करके ये जन्म अंतिम कहलाता है। तो इस नाम की महत्ता ना समझ करके ना समझ होकर पुरानी आदत है पाप करते रहना तो नाम पर अपराध चढ़ेगा ही। हम नाम को मलिन करने की चेष्टा करते हैं होता ही नहीं नाम तो इसलिए क्या ये चेष्टा कोई योग्य है ऐसी चेष्टा करने की आवश्यकता क्या है नाम के बल पर पाप करना और प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला का जप करने को कहा हम लोग कोशिश करते हैं कि चलो जल्दी जल्दी हो जाए तो बाद में फ्री हो जाए माला करूं बाद में फ्री हो जाए फ्री होकर क्या करोगे आई कैन डू एनी डेम थिंग फ्री ऐसे समझते हैं। भगवान का ये वचन जो भक्त होते हैं जो प्रगति करते हैं तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते तो नित्य भगवान के साथ जुड़ाने वाला उपाय है जो हरे कृष्ण महामंत्र है राइट। और आठवां अपराध ये है के हरे कृष्ण महामंत्र के जब कोई कर्मकांड शुभ सकाम कर्म है ऐसा समझना। वेदों में शुभ सकाम कर्म करने के लिए कर्मकांड बताया है कि चलो के अपने पिताजी चले गए हैं तो श्राद्ध में कोई इनकी शांति के लिए इनकी मुक्ति के लिए या कुछ ऐसे संकल्प करके हम करते हैं तो वो सकाम कर्म है। देह संबंधी है, आत्मा संबंधी कोई ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो हरिनाम ही सबसे बड़ा यज्ञ कहलाता है। सबसे बड़ा यज्ञ हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ ही संकीर्तनम प्राय यजंती सुमेधसा। जो अकलमंद है तो संकीर्तन यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। नौवां अपराध है अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा का प्रचार नहीं करना। पत्थर पर पानी जैसा हम अपने प्रयत्न भगवान की अनुकूल सेवा में लगाए, प्रतीक सेवा ऐसे नहीं करनी चाहिए। प्रतिकूल सेवा से ना अनुकूल स्वीकार करना, भगवान को प्रतिकूल छोड़ देना, ये चार नियमों का पालन भगवत प्राप्ति नहीं कराते क्योंकि जीव संबंधी है। जीव को अज्ञान बनाए रखना, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना जिसमें मांस मच्छी अंडा मद्याहार नशा का सेवन और ये जो परस्त्री व्यभिचार परपुरुष व्यभिचार और जुआ खेलना ये सब दूषित साधन कहलाते तो उसका उपयोग न करना। दसवां अपराध है भगवान के नाम की इतनी महत्ता बारंबार सुनने पर भी हम विषयाशक्ति बनाते रहते हैं तो वो भी अपराध, यानी कि चलो मलाही करनी है और आसक्ति बनी रहने छोड़ो धीरे धीरे, या जो कुछ है भगवान के साथ संबंध में बना के रखो तो योग बनाओ भगवान के साथ, आसक्ति मत रखो अलग चीजों से, या ये धीरे धीरे सब भगवान के हैं इसलिए भगवान को हम देने की भावना करें और इन लोगों को भगवान के पास जाने की भावना करें। कहते परिवार में भी हम आदर्श पूर्वक जो लोग नहीं करते हैं इनको आगे बढ़ाओ भक्ति में तो वो देहा शक्ति कम हो जाएगी और आप अपनी वास्तविक फर्ज भी बजा पाओगे। तो इस प्रकार दस अपराधों से हमें हमेशा अवगत रहना। सारे अपराध, नौ अपराध भगवान के नाम जपते रहने से अपनी अपनी समय मर्यादा में दूर होते हैं, लेकिन एक ही नहीं होता, वो वैष्णव जिसका हम बहुत सावधानी करते हैं। ये वैष्णव के अलावा दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता है, जिनका हमने अपराध किया है वही माफ कर सकता है, कोई उद्धार का साधन नहीं। इस दस अपराधों से अवगत रहकर बचना चाहिए, ना समझ कभी नहीं ले रहना, अवगत रहो। तो भगवान से सीधे दंडवत करके यहाँ सीधे दंडवत करो प्रभुपाद जी को बाद में